स्वर्ग के गेट जब खुलेंगे तो वो ही बच्चे उसमें प्रवेश करेंगे जो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं है। अब वो चाहे प्रजा वर्ग के हों चाहे राजघराने के हों, इसलिए कहा जाता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध ही स्वर्ग के गेट खोलेगा।
रूहानी यात्रा
और
मक्का की यात्रा।
मक्का की यात्रा मुसलमान लोग करते हैं, मक्का की यात्रा मदीना की यात्रा। उनको तो रूह का पता ही नहीं है, तो उनकी यात्रा को रूहानी यात्रा कैसे कहेंगे? रूहानी यात्रा तो तभी हो जा सकती है जबकि पहले रूह को पहचाने और रूहानी बाप को पहचाने। रूह को पहचानने वाले वो ही होंगे जो रूह बने होंगे। रूह बने ही नहीं होंगे तो रूह को पहचानेंगे भी नहीं। बाप आते हैं, रूहानी बाप, तो कितनों को रूहानी स्टेज में टिकने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। सब पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन रूहानी स्टेज में टिकने वाले कितने निकलते हैं? है? सिर्फ 4.5 लाख निकलते हैं, बाकी जो जन्म लेने वाले हैं वो भी देहभान में आ जाते हैं, शरीर छोड़ना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना पड़ता है। तो मुसलमानों की यात्रा में और भारतवासियों की यात्रा में फर्क तो जरूर है। क्या फर्क है? लेकिन है दोनों ही एक प्रकार की यात्रा, देवान की यात्रा है। असली यात्रा तो बाप सिखाते हैं, उनकी है जिस्मानी यात्राएं, चाहे हिंदुओं का तीर्थों में जाना हो चाहे मुसलमानों का मक्का मदीना में जाना हो, वो जिस्म को ले जाते हैं और हम रूह समझ करके रूह को ले जाते हैं।
थिएटर नंबर 666
ارے دنیاوی باتوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دنیا میں ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں.
کنیا ماتا سرینڈر ہوتے
ہیں بھائی, اپن کو سرینڈر سمجھیں اور سرینڈر ہو کر کے چلیں, کیونکہ کنیا ماتاؤں کو شرن لینے کی درکار ہے آج کی دنیا میں. ان کا تن کومل ہوتا ہے, پرشوں کو شرن لینے کی کوئی درکار نہیں ہے. اس لیے پرش چاہے تو سیوا میں اپنے کو ارپن کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے. باقی پرش یہ چاہیں کہ ہم سرینڈر ہو کر کے رہیں گے تو بہنوں ماتاؤں کی پرورش کیسے ہوگی؟ مرلی میں تو بولا ہے کنیاؤں ماتاؤں کو پیٹ کے لیے ماتھا نہیں مارنا ہے, پرشوں کو ماتھا مارنا ہے. باہر کی دنیا کے سنسرگ سمپرک میں رہ کر کے پرشوں کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, ماتاؤں کنیاؤں کا تو بگڑتا ہے. اس لیے ان کو شیلٹر ملتا ہے. بھائیوں کو شیلٹر لینے کی درکار نہیں ہے. بھائی لوگ اگر یہ چاہیں کہ ہم شیلٹر میں رہیں گے تو پھر وہ راجا کیا بنیں گے؟ جو اپنی ذمہ واری اپنے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو راجا بننے والی بات تو ختم ہو جاتی
ہے.
کنیا ماتاؤں کے لیے بولا ہے ناری سے کیا بننا ہے؟ ناری سے نارائن بننا ہے, یہ نہیں بولا. کیا بولا ہے؟ ناری سے لکشمی بننا ہے. لکشمی پھر بھی کس کے آدھین ہوتی ہے؟ نارائن کے آدھین ہوتی ہے.
بابا یہ تو سنگم کی بات ہے.
سنگم کی ہی بات ہے, سنگم میں ہی پرشارتھ کر رہے ہیں.
بابا مدھن والا مدھن والوں کو مدھن چھوڑنا پڑے گا, گیتا پرشن والوں کو گیتا پرشن چھوڑنا پڑے گا. اور منی مدھن میں تو کنیا ماتا ہی رہتے ہیں, پر بھائی کہاں جائیں گے؟
گیتا پاٹھشالا میں بھائی لوگ جاتے نہیں ہیں؟
جاتے ہیں.
جن کو گیتا پاٹھشالا میں کلاس کرنا ہوتا ہے گیتا پاٹھشالا میں جاتے ہیں, وہاں نہیں جاتے ہیں تو منی مدھوبن میں کلاس کرنے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں کلاس تو کرتے ہیں. تو نہ منی مدھوبن رہیں گے نہ گیتا پاٹھشالا رہیں گے تو جائیں گے کہاں؟ ہے کوئی تو بدھی کو ٹھکانا ملا ہوگا نا. ٹرنک کال آئے گا, ایک ہی ٹرین جائے گی. جو آدھ میں ہوا سو انت میں بھی ہوگا. اور
پریوار میں ایک بیان میں نکل کے آیا, وہ پورا پریوار آج میں تو کل ضرور بیان میں آ جائے گا. باپ کو جانے گا مانے گا, صرف پکا بجلی کی آتما بنے گا یا نہ بنے گا. پریوار بولے تو کس کو کہیں گے؟ بابا خون کی رشتے دار یا اپنا لوکی دنیا میں کچھ کام کرنے کے جگہ پہ اپن سے گہرائی سے کوئی ہے, اپن سے بہت بزرگ کے رہتا ہے, اپن کو مانتے ہیں جانتے ہیں, اپن کو بہت رشتے دار بول کے سمجھتے ہیں, آدمی پریوار جیسے سمجھتے ہیں, وہ بھی پریوار بنے گا یا نہ بنے گا؟ صرف خون کی رشتے دار ہی پریوار کہیں گے یا ان کو بھی پریوار کہیں گے؟
پریوار کہا جاتا ہے خون کے کنیکشن کو. ایک پریوار میں آٹھ بھائی ہیں, چاچا ہیں, ماں باپ ہیں, تو وہ سب پریوار ہیں. اس لیے پریوار کے جو بھی بھاتی ہیں وہ سب گیان میں چلیں گے. کیوں چلیں گے؟ اس لیے چلیں گے کہ ایڈوانس گیان جو بھی ہم سنتے ہیں परिवार के लोग भी सुनते हैं, भले स्वीकार नहीं करते। सुनते हुए भी वो हमको स्वीकार करते हैं, परिवार से हमको धक्का देके निकाल नहीं देते। और दूसरे धर्म की आत्माएं जो तथाकथित ब्राह्मणों में भरी पड़ी है, वो क्या करते हैं? वो हमको धक्का दे करके निकाल देते हैं, हमको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए वो आवेंगे परिवार के लोग, जब आवाज निकलेगा तो उनको आकर्षण हो जाएगा और वो नहीं आवेंगे।
बोले तो आप इतना लंबे समय तुषार करते हुए भी पक्का बीजू की आत्मा का स्टेज में सीखने पर है, फिर वो लोग अंत में आकर के कहां तक धारणा करके बीजू की आत्मा बनेगा?
उन्होंने सुना तो है सब कुछ, अभी सुन रहे हैं कि नहीं? इतना अपोजिशन नहीं कर रहे हैं कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दें? अपने दिल में फिर भी तो जगह दी है ना, तो इसका अधूरा उनको ये मिलेगा कि भले राज परिवार में नहीं आवेंगे, क्योंकि राजयोग नहीं सीखा है, प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन प्रजा वर्ग में जरूर आ जाएंगे। और प्रजा तो ढेर के ढेर बनती है,
तो अपना परिवार भी जरूर ये सारा विश्व के बीज रूपी का स्टेज में जरूर आ जाएगा, मगर इतना नहीं बोल सकते अपन दो लोग की राज परिवार में आते ही हुए।
राज परिवार में तो वो ही आवेंगे जिन्होंने राजयोग की प्रैक्टिस की है, जिन्होंने सिर्फ संदेश लिया है,
फिर
पढ़ाई नहीं पढ़ी है।
परिवार को बात अलग है बाबा, अपना लौकिक दुनिया में काम करने का जगह पे, कुछ रहने का जगह पे अपन से गहराई से पहुंच गया, तो अपन 24 घंटे में ज्यादा समय अपना ऊपर लगन लगाया, बोले उनका हाल क्या है, उनका पाठ कैसा होगा, वो लोग 63 जन्मों के हिसाब से अपना शूटिंग का टाइम में आपस से मिलके फिर अपना बात मानते हुए भी बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं, मगर उतना गहराई से नहीं पहुंचते, फिर उनका हाल क्या है? वो लोग भी जरूर अपना साथ भी रहते हुए भी वो लोग भी ज्ञान स्वीकार करके अपना बात मान रहे हैं, उन लोग को जान रहे हैं, अपना बाबा को भी स्वीकार करें, मगर ज्ञान में नहीं आ रहे, बोले तो वो लोग भी जरूर आ जाएगा या ना आ जाएगा?
जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्राप्ति करेंगे। उन्होंने सिर्फ सुना लेकिन अपोजिशन करते रहे, तो फिर उच्च पद कैसे पा जाएंगे? हाँ, अंत में जब आवाज निकलेगी तो उनका नाक नीचे झुक जाएगा कि ये तो सच्चे निकले। इसलिए हो सकता है कि उनमें से भी बहुत आ जाए। तो संदेश देने में कोई हर्जा नहीं, कोई भी हो संदेश तो देते ही रहना चाहिए, सिर्फ संदेश मात्र देने से प्रजा बनती है, और प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती है। राज परिवार में आने वाले बहुत थोड़े होंगे और प्रजा वर्ग में आने वाले ढेर के ढेर होंगे।
द्वापरिक से शुरू होता है धर्म का डिफरेंस, धर्म का अपना अपना धर्म में चले जाना, अपना अपना धारणा को फॉलो करना, अपना अपना राजा ही चला देना, अपना ही बात मान लेना बोल के, ऐसा नव धर्म वाला ऐसा होता है तना का समय वो बीज बैठ जाता है हिंदू धर्म वाला, फिर इस तरफ इस्लाम धर्म वाला ऐसा, बौद्ध धर्म वाला ऐसा, नव धर्म वाला बीज रहता है अपना। अभी संगम युग शूटिंग टाइम में रुद्रमाला आत्माओं से ही होता है बीज, फिर वो लोग एक एक धर्म को समान रूप में अपन डिवाइड करना चाहिए या बड़ा या छोटा बीज ऐसा, बोले तो ज्यादा हिस्सा बीज या छोटा हिस्सा का बीज बोल के ऐसा डिवाइड करना चाहिए, बोले तो नव धर्म को अपन 2,25,000 का बीज पड़ा हुआ है रुद्रमाला का अंदर, फिर एक एक धर्म को अपन डिवाइड करेंगे तो एक एक धर्म को 25,000 का बीज होना चाहिए, ऐसा उस हिसाब से बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए?
क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, समझा किसी ने?
बाबा मैं तो उनको समान हिस्सा देना है,
है?
हर धर्म समान हिस्सा,
हर धर्म समानता में कैसे आ सकता है? क्रिश्चियन धर्म की फॉलोअर्स सबसे जास्ती होते हैं और सिख धर्म के फॉलोअर्स बहुत थोड़े होते हैं, तो समानता कैसे हो सकती है फॉलोअर्स की?
नबी में जो द्रमलात्मा का बीज जो होता है, पूरा धर्म वाला का बीज है, सब धर्म का, नौ धर्म का बीज है ना
बाबा,
फिर समानता होना चाहिए संगमित में, हर एक धर्म का बीज, एक धर्म वाला बीज कम 2000 रहना चाहिए और इस्लाम धर्म का बीज अगर 10000 रहना चाहिए, ऐसा अलग अलग नहीं है ना
दुनिया में? मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा हो गई और सिखों की संख्या कम रह गई, कारण क्या हुआ? नहीं, सिखों में एक नारी सदा ब्रह्मचारी, विचार ज्यादा नहीं पनपा, इसलिए उनकी जनसंख्या कम हो गई। और मुसलमानों में क्रिश्चियंस में विचार जास्ती पनपता है, इसलिए विकारों में नयापन होने के कारण जनसंख्या जास्ती बढ़ जाती है। तो जैसे वहां होता है वैसे यहां भी होता है। फिक्स नहीं किया जा सकता।
विनाश सारा विश्व का विनाश वाला प्रज्वलित होता है, यहाँ राजेश आश्रम में अविनाश की दुनिया नेगेटिविटी से विनाश वाला प्रज्वलित होता है, इसका भेद में क्या बाबा? सब लोग ऐसा भटक जाते हैं कि अपना अपना धर्म में, अपना अपना जगह पे, अपना अपना घर को, या उनका संकल्पों का दुनिया को विनाश करके बाबा का धर्म को फॉलो कर देते
हैं। आप मुए मर गई दुनिया, 76 में विनाश की घोषणा की तो क्या मर गई दुनिया? ये तो अंदर से समझने की बात है कि हमने जिस दुनिया को समझ लिया कि ये ईश्वरीय रास्ते पर चलने वाली नहीं है, उनसे हमारा कनेक्शन कट हो गया। बुद्धि का योग नष्ट हो गया, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा लेना देना उनसे है जो बाप के बच्चे बनते हैं, बाप को पहचानते हैं। तो यहीं से ही विनाश की शुरुआत हो जाती है। दुनिया का हर काम संकल्पों से शुरू होता है, स्थापना भी संकल्पों से होती है और तो विनाश भी संकल्पों से ही होता है। हर चीज पहले सूक्ष्म रूप धारण करती है, बाद में स्थूल रूप धारण करती है।
माता गुरु बनने के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है बोले बाबा, फिर वो शंकर जी भी एक पुरुष है, उसका बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ा माता कौन है? उसको सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए।
लक्ष्मी कौन बनती है?
छोटी माता है ना, भारत माता।
तो जो भारत माता लक्ष्मी बनती है, सच्ची गीता बनती है, तो गुरु भी बनती है। अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा गुरु होगा तो प्राप्ति अच्छी कराएगा या नीची प्राप्ति कराएगा? अच्छी प्राप्ति कराएगा।
अगर मंदिर में चित्र में दिखाया है शंकर जी को, महाकाली आकर के बुद्धि का पेट को दबा दिया।
महाकाली बुद्धि के पेट को नहीं दबा दिया, छाती के ऊपर पांव रख दिया, माने बेइज्जती कर दी, पेट को नहीं दबाया।
बोले तो उस समय परिवर्तन नहीं हुआ महाकाली का वजह से
है?
महाकाली से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ लक्ष्मी से ही परिवर्तन हुआ।
परिवर्तन शक्ति ही परिवर्तन करेगी ना। एडवांस पार्टी में तीन प्रकार की ग्रुप हैं, एक प्लानिंग पार्टी, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी ही परिवर्तन करेगी, और प्रैक्टिकल होता ही है प्योरिटी से। जितनी प्योरिटी होगी प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि प्योरिटी से यूनिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसलिए बोला शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है और पीछे पीछे सारा ही झुंड चला जाता है। और जो बीज रूप वाली दुनिया है वो प्रजा किसकी है? सेकंड थर्ड फोर्थ की प्रजा है या फर्स्ट क्लास जो डायनेस्टी है उसकी प्रजा है? जो फर्स्ट क्लास डायनेस्टी है, सूर्यवंशियों की डायनेस्टी, उस डायनेस्टी की जो प्रजा बनने वाले होंगे वो औरों की प्रजा बनना स्वीकार करेंगे? जो शेरों के कुल के हो, शेरों के कुल का एक छोटा सा बच्चा हो, वो गधेड़ों के कुल का राजा बनना पसंद करेगा? फिर बात खत्म हो जाती है। पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी विशेष विशेषता है, जो विशेषता और धर्म और डायनेस्टीज की प्रजा में नहीं है। वो सब ज्ञानी तू आत्मा है। सूर्य के बच्चे सब सूर्य समान है, रोशनी फैलाने वाले हैं। इसलिए गायन है, जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो 9 लाख सितारे दुनिया में रोशनी फैलाएंगे। स्थूल में परम धाम माने शरीर भी रहे और परम धामी स्टेज भी बनी रहे। शरीर रहते रहते स्टेज कैसी हो मन बुद्धि की? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। देह का कोई अहंकार नहीं, देह की कर्मेंद्रियों में कोई विकार न भासे, कर्मेंद्रियां शीतल अनुभव हो, वो ही परमधाम की स्टेज है।
बाबा, सात्विकता और अहिंसा का परिभाषा क्या है? सात्विकता और अहिंसा,
सात्विकता और अहिंसा तो एक ही बात है।
क्योंकि बाबा
सात्विकता होगी तब ही अहिंसा होगी। तामसी तब तो जितना जास्ती होगा उतनी हिंसा जरूर होगी।
चूहे और मच्छरों को मारना है हिंसा और जो भी खाने
एक है बड़ा पाप और एक है छोटा पाप, एक है बड़ा पुण्य और एक है छोटा पुण्य। जो मच्छर मक्खी है, कीटाणु है, उनमें उन आत्माओं में ज्ञान को समझने की शक्ति है? नहीं है। और मनुष्य में ज्ञान को समझने की शक्ति है? तो एक मनुष्य को बचा लिया उसमें भी आत्मा है और एक मच्छर को बचा लिया, दोनों का पुण्य बराबर बनेगा क्या? नहीं। इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए, क्योंकि वो परमात्मा बाप के जास्ती नजदीक है, मनुष्य आत्मा है परमात्मा के ज्यादा नजदीक है या कीट पशु पक्षी पतंगे और कीड़े मकोड़े जास्ती नजदीक है? मनुष्य जास्ती नजदीक है। तो मनुष्यों को बचाने के लिए अगर कीट पशु पक्षी पतंगों को मारना भी पड़े तो भी पुण्य ज्यादा बनेगा या पाप ज्यादा बनेगा? पुण्य बनेगा।
भावना की बात है।
भावना क्या? ये भी तो भावना है कि भगवान के जो जास्ती नजदीक है, जो भगवान को जास्ती पहचान सकते हैं, वो ज्यादा कल्याण करेंगे, या जो बहुत दूर है बुद्धि योग से, वो जास्ती संसार का कल्याण करेंगे? ज्यादा वैल्यूबल कौन है? जो जास्ती वैल्यूबल है उसकी पहले रक्षा करनी पड़े। और
बाबा ये सीधी में बोल रही है, पुराना दुनिया खत्म होने के बाद जो शरीर का तोड़ना बोल रही
है,
पुराना दुनिया खत्म होने के बाद शरीर का तोड़ना बोल रही है सीधी में, शरीर में
पुरानी दुनिया खत्म होने के बाद
शरीर छोड़ने का बोल दिया।
क्या पूछ रहे हैं?
शरीर में जाएंगे, शरीर में
शरीर के साथ कैसे जाएंगे अगर शरीर छोड़ देंगे तो?
शरीर सतयुग में ऐसे नहीं जाएंगे जैसे हम समझते हैं, लेकिन जब सारी दुनिया में गर्मी बढ़ने से, एटमिक एनर्जी का विस्फोट होने से मूसलाधार बरसात होगी कई दिनों तक, तो बर्फीला वातावरण तो बन जाएगा। उस बर्फीले वातावरण में जो व्यक्ति याद की यात्रा में गहरे होकर के शरीर छोड़ेंगे, शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी, उनके शरीर सुरक्षित रह जाएंगे। बाकी नंबर बार परमधाम से आत्माएं आती जाएंगी और उन शरीरों में प्रवेश करती जाएंगी। नेचुरल वो बर्फ ऑटोमेटिक हटेगी और उन शरीरों में आत्माएं प्रवेश करेंगी।
महाभारत में गीता आया था ना, विष्णु ने अर्जुन को गीता सुनाया, जब अनुभव गए तो गुरुओं को पिताओं को भाइयों को देखकर विवश होकर के कहा मुझे राजू नहीं चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए। जब विष्णु ने गीता तभी मैं पूछा था बाबा ये यदि की आज की बात है या दोबारा जन्म लेकर बीस नवम्बर को आया उसकी बात है, तो बाबा ने कहा जो यदि की
शास्त्रों में मंदिरों में या जहाँ भी जो यादगारें बनी हुई है वो संपूर्ण रूप की यादगारें हैं या अधूरे रूप की यादगारें हैं? है?
आटे में नमक
मिसल सच्चाई है, लेकिन जो भी सच्चाई है वो कहाँ उठाई गई है? संगम में भी किस समय से उठाई गई है? शास्त्र जो है वो परिपक्व स्टेज में जब बनते हैं द्वापर के आदि में तो संपूर्ण स्टेज के शास्त्र हैं या अपूर्ण स्टेज के हैं? अपूर्ण स्टेज के। संपन्न स्टेज जब बनी है तब चित्र भी बने हैं, मूर्तियां बनी हैं और शास्त्र भी बने हैं। शुरुआत में शास्त्रों में भी सच्चाई थी, बाद में उनके इंटरप्रिटेशन होते होते बात बदल गई। ओल्ड इज
गोल्ड। बाबा तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ज्ञान इतना नहीं था,
ज्ञान नहीं था उस समय ज्ञान क्या क्लियर था? आत्मा और परमात्मा का जो मूल परिचय है, बेसिक परिचय है, वो उस समय था क्या? लिंग को याद करते थे, लाल लाइट के गोले को याद करते थे, तो ज्ञान तो अधूरा ही था ना। और ये नहीं कहना चाहिए कि आज में इतना ज्ञान नहीं था। अरे ये तो मुरली में बोला है, मुरली की बात को हम ये कह सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो चीज नहीं मिली है तो इसका मतलब यही है कि ये हो सकता है कि वो चीज है ही नहीं। हाँ, अभी नहीं मिली, आगे चल के मिल जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। अगर वो आत्मा ऐसी मृत्यु अनुभव न करे तो दुनिया की और दूसरी आत्माएं कैसे अनुभव कर लेंगी? उस बीज में सब कुछ समाया हुआ है, अच्छे से अच्छा भी समाया हुआ है और बुरे से बुरा भी समाया हुआ है।
और बाबा मुरली जो बोला है, काश को भी गायब कर दिया, उनका चित्त भी घूमना कर दिया,
तो क्या हुआ?
बाबा उनका मृत्यु कराची में हुई थी या दिल्ली हैदराबाद में हुई थी या कलकत्ता में हुई?
कराची में तो बाद में पहुंचे हैं सारा संगठन। जब कराची पहुंचे हैं तब मुरली निकलना शुरू हुई। उससे पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। उससे पहले सिंध हैदराबाद में ही संगठन था, उसका नाम था ओम मंडली। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नामकरण और सूत्रपात सन 47 के बाद हुआ है। तब विचार बनाया कि यहां से ट्रांसफर करके इंडिया में ले जाए। इंडिया में ही ब्रह्मा की मान्यता है, पाकिस्तान में ब्रह्मा को कोई मानने वाला नहीं है।
बाबू मुरली में ऐसा पॉइंट आया, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उसका कोई हज्जा नहीं कर सकता
है।
जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उसका कोई हज्जा नहीं कर सकता, ऐसा पॉइंट है।
हज्जा नहीं कर सकता,
हत्या।
श्रेष्ठ आत्माएं कलयुग में होती है, ये कलयुग में सब भ्रष्ट आत्माएं होती हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। हाँ, ये कहेंगे कि हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी का मतलब ये नहीं है कि हर जन्म में वो सत्व प्रधान पार्टी बजाएगा। हाँ, जब षष्ठी तमो प्रधान बनती है तो तमो प्रधान में भी वो अति तमो प्रधान बन सकता है। जब षष्ठी रजो प्रधान बनती है तो रजो प्रधान वालों के बीच में वो सबसे जास्ती रजो प्रधान भी पार्ट बजाता है। बल्कि यूं कहें कि शुरुआत भी उसी से होती है। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। और
बाबा ऐसा क्या कौन सी कारण था उनका हत्या करने
का? ये भी कोई बात हुई। जब राजाएं बने हैं पूर्व जन्म में और वो राजाएं कोई श्रीमत के आधार पर तो बने नहीं है द्वापर कलयुग में। आखिरीन तो मनुष्य मत और मनमत के आधार पर राजाएं बने ना, तो पाप कर्म तो करते थे ना राजाएं, अहंकार में आकर के। तो उनके हिसाब किताब किसी के साथ ऐसे नहीं बन सकते। राजाएं तो कितनी हत्याएं करा देते थे, माने ब्रह्मा बाबा विरोधी खेमे में नहीं थे है? ब्रह्मा बाबा और बड़ी माँ जो महाकाली का पार्ट बजाने वाली है वो विरोधी खेमे में नहीं थी।
बाबा उसका तो प्रूफ नहीं है ना विरोधी के
है?
विरोधी के विरोधी थे वो लोग, उसका प्रूफ नहीं।
क्यों? सन 42 में शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ की संचालन किसके हाथ में रही? यज्ञ किसकी इस रहबरी में पलता रहा? और धर्म की जो भी आत्मा यज्ञ के अंदर बची वो किसकी रहबरी में पली? जिनकी रहबरी में पली वो सब विरोधी ही तो थे। जो राम संप्रदाय थे वो आदि में ही चले गए। ब्रह्मा बाबा में सहनशीलता नहीं थी और राम वाली आत्मा में सामना करने की शक्ति नहीं होती, ये तो शिव प्रवेश करता है और शिव प्रवेश करके उनसे कराता है। अगर उनमें इतनी सहनशीलता होती तो 63 जन्मों में ही ऐसी सहनशीलता का पाठ बजाय दिया होता और संगठन खड़ा कर लिया होता। बाली की हत्या की थी
वो बारे
उसका तो अंजाम ही था, जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा वो ही बाली को मार पाएगा।
वो राम को देखने के बाद राम शक्तिहीन हो जाएगा बाबा।
हाँ, उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जो उसका सामना करेगा तो उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो फिर क्या बेवकूफी है कि सामना करने करके उसे मारना?
राम तो भगवान थे।
वो भगवान थे, राम भगवान थे, उसमें प्रवेश करने वाला शिव भगवान था। प्रवेश करने वाले का पाप पुण्य बनता है या शरीरधारी का पाप पुण्य बनता है? भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो भूत प्रेतों का पाप पुण्य बनता है या जिसके शरीर से पाप पुण्य कराते हैं उनका बनता है? शरीरधारी का बनता है।
बाबा सभाओं में बाप दादा का पर्सनल मुलाकात बच्चों से एक मतलब क्या है बाबा?
बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात कर लेते हैं, माने एक एक का पोता मेल तो बाप के पास है ना, तो बाप किसी के पोता मेल के आधार पर कोई बात ऐसी गुप्त कह देता है जो उसी बात को उसी व्यक्ति को पहचान में आती है, समझ में आती है और दूसरों को समझ में ही नहीं आती, तो पब्लिक के बीच में पर्सनल मुलाकात हो गई।
गांधी का गाड़से का मीटिंग
है?
गांधी का गाड़से का
मीनिंग क्या है?
हाँ। गांधी का हद क्या है, गाडसे का हद क्या है?
गंध सबसे निकलता है गांधी, क्या चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे महात्मा गांधी हो, और वो है गाडसे। जो नाथुराम गाडसे था वो ज्यादा पावरफुल साबित हो गया, नहीं तो कमजोर आत्मा पावरफुल आत्मा की हत्या नहीं कर सकती।
शरीर धारण करके साधा देकर अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि पापा जो प्रवेश करती है वो दूसरे शरीर से प्रवेश करके साधा देकर, या आत्मा उसके प्रवेश करके साधा देकर?
जो आत्मा प्रवेश करती है, जो औलिया लोग होते हैं प्रवेश करने वाली आत्माओं को बांध लेते हैं, उनको शरीर से बाहर नहीं निकलने देते और फिर उनकी प्रताड़ना करते हैं, तो शरीर में रह करके उनको एहसास कराते हैं ना। ऐसे ही धर्मराज की सजाएं भी ऐसी भी है कि बल कोई को सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, जब चाहे बाहर आ जाए जब चाहे प्रवेश करे, लेकिन जब सजाएं मिलेंगी तो उस आत्मा को भी महसूस होगा, शरीर के द्वारा ही सजाएं महसूसता आएगी।
भैंस के विषय में बताया गया है जो शरीर को गंध मिलता है से आत्मा को पावित आत्मा को गंध नहीं मिलता, क्योंकि वही बात यहाँ
वो आत्मा तो सतु प्रधान थी, जो सतु प्रधान आत्मा है उसको सजा नहीं मिलती, यहाँ तो तमो प्रधान आत्माओं की सजा की बात है। क्राइस्ट का तो पहला जन्म था और अभी जो आत्माएं सजा भोगी उनके तो अंतिम जन्म है, तामसी आत्माएं हैं।
शरीर धारण कर अपने साथ ले जाओ, ये दोनों शिव बाबा ने बोली। तो
धर्मराज ज्ञान सुनाता है क्या?
नहीं नहीं, ये बात शिव बाबा ने बोला।
हाँ
तो
धर्मराज मेरे साथ है ना, धर्मराज भी साथ में जाता है और मैं भी जाता हूँ। पहले तो धर्मराज है कौन? कौन है?
ब्रह्मा बाबा।
बाप तो प्यार का सागर है, वो तो कभी किसी को दंड बंद देता ही नहीं है। धर्मराज मेरे साथ है, वो हड्डी हड्डी तोड़ दे देंगे। तो जो धर्मराज साथ में है वो आत्मा ही अलग है, और वो अकेली नहीं है। जैसे इतना बड़ा राज्य चलता है तो उसमें अकेला कोई जज नहीं होता है, और भी असिस्टेंट होते हैं नंबर वार। तो ऐसे ही वो ब्रह्मा की सोल जिस महाकाली में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तो वो भी महाकाल का साकार रूप है। और कोई भाषा नहीं होगी ऐसा नहीं बोला, भाषा बहुत हल्की होती है, कम बोलते हैं, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, लेकिन इशारे की भाषा जास्ती होगी और बोलना बहुत कम होगा। जिसका दिल से दिल मिलता है वो दिल की बात इधर आती है और दूसरे को दिल में पता लग जाती है, वो कैसे होता है? तो वहां तो संस्कार ही मिले हुए होंगे सबके एक दूसरे से, कोई के संस्कार कोई से टकराएंगे ही नहीं, तो संकल्प भी कोई के दूसरे से टकराएंगे ही नहीं।
है
है जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो उस धोबी घाट की बात को जहाँ पहचानेंगी है वो तो नहीं पहचानेंगी तो विरोध ही करेंगी ना है इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन बनाना करना अभी संगम युग में होगा। हर आत्मा भगवान का ज्ञान लेकर के जाएगी। सबकी सदगति करने वाला एक है या दो चार हैं? एक ही है। तो नंबर वार सब ज्ञान उठावेंगे, एक जैसा उठावेंगे, नंबर वार उठावेंगे। तो कोई तो उनमें ऐसा ज्ञान उठाने वाले हैं जो एकदम सतो प्रधान फर्स्ट क्लास ज्ञान उठावेंगे। पुरुषार्थ भी एकदम सतो प्रधान करेंगे। उस पुरुषार्थ का रिजल्ट ये होगा कि वो अपने वाइब्रेशन ही ऐसे बना लेंगे कि दुनिया में चाहे जितना भी दुख बरपा होता रहे, विनाश बरपा होता रहे, लेकिन उनकी सात्विक स्टेज बनी रही। उनके ऊपर प्रकृति का भी कोई प्रकोप नहीं होगा, बीमारियों को कोई प्रकोप नहीं होगा और मानवीय आपदाओं का भी कोई प्रकोप नहीं होगा। उनके वाइब्रेशन ही ऐसे होंगे कि उनके पास दुख आवेगा ही नहीं और आवेगा तो भासेगा नहीं, तो अंत मते सुगते हो जाएगी। ऐसे ही उनके मुकाबले वो आत्माएं हैं जो हाय हाय और दैया तोबा करके शरीर छोड़ेंगे। वाइब्रेशन बहुत गंदे होंगे, तो ऐसे ही टाइम पर आकर के उनको फिर जन्म मिलेगा। अभी अभी टाइम है अपने को कन्वर्ट करने का, अपनी आत्मा को सात्विक, चाहे जैसा वातावरण हो, चाहे जैसे संगी साथी हो, दुख देने वाले हो, परेशान करने वाले हो, लेकिन अपनी आत्मा को जिसने अभी सात्विक बना लिया वो ही राजयोग सीखने वाला सच्चा पुरुषार्थी है।
विनाश के बरपा से टाइम में आत्मिक स्थिति में जो शरीर छोड़ता है उसी टाइम में परंधाम से आत्मा आती है जाती है ना,
आती है जाती
है,
प्रवेश करती है ना आत्मा। हाँ। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो
गई, विनाश के टाइम पर प्रवेश नहीं करेंगी।
नहीं, बरपा में जो शरीर छोड़ दिया ना आत्मिक स्थिति में,
आत्मिक स्थिति में जो शरीर छोड़ेंगे वो सूक्ष्म बतन में इकट्ठे होते रहेंगे।
बर्फ में पड़ा हुआ सो
बर्फ में पड़े हुए हैं वो पड़े हैं, लेकिन उनकी आत्माएं तब तक सूक्ष्म बतन में इकट्ठी रहेंगी जब तक 500 करोड़ की दुनिया का विनाश न हो जाए।
उस आत्मा में तो उस शरीर में कौन सा आत्मा प्रवेश
होगा?
ऊपर से आने वाला है जाने वाला है उसमें आत्मा में प्रवेश होता है।
बर्फ के अंदर, बर्फ के अंदर थोड़ी प्रवेश होता है। तो हिसाब बना हुआ है, जिनके शरीर सुरक्षित होंगे उनमें ही आत्मा का प्रवेश होगा, जिनके शरीर सुरक्षित होंगे ही नहीं उनमें प्रवेश क्यों होगा?
वो आत्मा को कैसे पता है कि वो ही शरीर उसका है?
अरे 500 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, उनमें संसार भरा हुआ है ऑटोमेटिक। अपने टाइम जैसे बीज है 12 महीने होते हैं, वो बीज अपने टाइम पर ही उगता है। वो बीज अपने टाइम पर ही क्यों उगता है? जब समय की सुई घूमती है वैसा मौसम आता है तभी उस आत्मा को उतरना है, उसमें संसार भरा हुआ है। ऐसे थोड़े कि परमधाम में बैठ करके सोचते हैं कि मैं जाऊं या शिव बाबा वहां सोचता है कि मैं जाऊं? नहीं, शिव बाबा में अपने ज्ञान सुनाने के जो संस्कार भरे हुए हैं अपने टाइम पर वो स्वतः ही आते हैं। ड्रामा में बंधा हुआ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे ही 500 करोड़ आत्माएं भी ड्रामा के बंधन में बांधी हुई है।
बाबा
अभी उनको ये पता नहीं है राम वाली आत्मा को कि जब विष्णु रूप बनेंगे तो चारों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। उनको नहीं मालूम है क्या? हाँ, तो इकट्ठी होकर के याद कर लो।
सबसे ज्यादा नीचे और नीचे के चक्कर में आने वाला ब्रह्मा,
भले उसको भी आप समान बनाना है कि नहीं
बनाना।
जब माँ और बाप, माँ जब जानती है कि बच्चे को कल्याण करना है तो माँ ये डरेगी कि बच्चे को हैजा हो गया, उसको गोद में नहीं लेना, डरेगी नहीं? अरे बाप को तो करना ही करना है, पहले बच्चे का कल्याण होगा तब।
एक मुरली पॉइंट है, पंचायत सेवा में लगे रहते हैं, उन बच्चों को भी मैं उपदेश कर याद करता हूँ बाप की बात, क्योंकि उसी प्रकार जो रामायण ने कही अपने आत्मा को कैसे पहचान, शिव ही बिंदी के रूप में समाय एक ही शरीर
है,
तो क्योंकि बाबा ने कहा है आज को पहले अपने शरीर से लगाओ।
अपने शरीर से लगाव नहीं होता है, पहले अपनी आत्मा से ही लगाव होता है। हाँ हाँ, लेकिन तीनों आत्माओं में संस्कार तो अलग अलग हैं।
पिछले बार बोला गया है भगवान है, ऐसा ये भी बता दे मैं कौन सा पखवाड़े वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ, ये भी बता दे।
नारायण बनने वाली आत्मा को ये पता नहीं है मैं कौन सा पद पाने वाला हूँ, ऐसा बोला जा सकता है? नारायण वाली आत्मा उसको ये पता नहीं होगा कि मैं कौन सा पद पाने वाली हूँ। अगर खुद को ही पता नहीं होगा तो दूसरों को कैसे पता लगेगा, और दूसरों को पता नहीं लगेगा तो साकार में निराकार याद कैसे करेंगे?
साक्षात्कार के आधार से पता चला है
क्या मैं ही नारायण बनूंगा?
साक्षात्कार के आधार से,
साक्षात्कार के आधार से लक्ष्मी को पता चलेगा, सीता को पता चलेगा, द्रौपदी को पता चलेगा, पार्वती को पता चलेगा, या राम को साक्षात्कार के आधार पर पता चलेगा? राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है या भक्त आत्मा है? साक्षात्कार किसको होंगे? भक्तों को साक्षात्कार होंगे। और ज्ञानी आत्मा वो तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धि के आधार पर पहचानेंगे। और
बाबा के साइंटिस्ट कह रहे हैं मंगल ग्रह पृथ्वी के नजदीक आई है, तो फिर बाबा के ज्ञान के आधार से देखा जाए तो अगर मंगल ग्रह को आना ही है तो बाप के नजदीक आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं एक बाप के सिवाय कोई भी संगति नहीं है, तो पृथ्वी तो माँ है, पृथ्वी तो माता
है, क्या हुआ मंगल ग्रह जो है, मंगल जो है वो कौन से देवता का सूचक है? मंगल के दिन कौन से देवता की पूजा होती है? हनुमान की, पूछड़ी वाले की। तो पृथ्वी के नजदीक हनुमान जी आएंगे या कोई दूसरा आएगा? फिर सीता जी जब रावण की जेल में चली गई तो सबसे पहले उनके नजदीक कौन पहुंचा? मंगली पहुंचा, क्या बड़ी बात हो गई।
बाबा जैसे जैसे जिन्होंने तीन भाइयों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, फिर थोड़ी देर बाद विरोधी बन गए, वही भाइयों की बनेंगे क्या?
जो आदमी नियम क्या है, जो आदि सुअंत बीच में भले कुछ भी करते रहे लेकिन उन्होंने टाइम पर बीज बोया। जैसे फसल बोई जाती है तो आगे आगे जो बीज बो देते हैं मौसम पर उनको ज्यादा अनाज मिल जाता है, ज्यादा फल मिल जाता है। उसी तरीके से दिल्ली वालों ने शुरुआत में जिन्होंने बीज बोया उनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है अंत तक बाप दादा बांधे हुए हैं उनको सहयोग देने के लिए। अगर वो सहयोग लेना चाहे तो कितना भी बीच में विरोध करे। अरे शुरुआत में सहयोग किसने दिया? जो पहले सहयोग दे उसका ज्यादा वजन है कि जब सैकड़ों निकल पड़े तब सहयोग दिया उनका ज्यादा वजन है? भारत जब नीचे पड़ा हुआ है सीढ़ी में कांटों की सैया पर कोई उसको भीख देने वाला नहीं है और उन विदेशियों ने आकर उसको भीख दे दी, तो एहसान मानना नहीं चाहिए।
वो लोग विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे क्या? अष्टदेव करेंगे
विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे का मतलब ये हुआ कि जो ठेठ विदेशी है बीज रूप आत्मा में वो प्रत्यक्ष करते हैं, कोई और प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। ये अष्टदेव तो सूर्यवंशी हैं, भारतवासी हैं।
देवता ये नहीं है,
देवता
ये
नहीं
तो देवता है, उनके लिए थोड़े कहा गया है।
संबंधी सरोगति कहते हैं ना, कोई भी अंत में शरीर छोड़ जब बाप को याद करे तो उनका पुनर्जन्म कैसा मिलता है?
पुनर्जन्म अच्छा ही मिलेगा, जैसी जैसी स्टेज की बाप की याद होगी वैसा ही जन्म मिलेगा। मामे कम याद होगी तो अच्छा ही जन्म मिलेगा ना, बिविचारी याद होगी कोई और की थोड़ी थोड़ी याद आ गई तो फिर नीची स्टेज हो जाएगी और अंत समय में तो वो ही याद आता है जो सारे जीवन में याद किया जाता है। पुरुषार्थ का सारा जीवन टोटल मिला के जो याद किया है वो अंत समय में वो याद आ जाएगा।
अगर बाप को याद करके शरीर छोड़े तो पुनर्जन्म कैसा मिलता है?
जो बाप को याद करके शरीर छोड़ेगा उसने जरूर अपने पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक याद किया होगा, तभी बाप की याद आवेगी, नहीं तो नहीं आवेगी।
हाँ जन्म मिलता है कैसा? ऐसा जन्म मिलता है
पुनर्जन्म जिनको पुनर्जन्म
मिलता है ना,
वो ज्ञान में ही तो आएगा।
ज्ञान में आपको जरूर छोड़े।
नारायण वाली आत्मा सत्युग में जन्म देगी राधा कृष्ण को, वो कैसे आएगी? वो कोई देहधारी को याद करके आ जाएगी क्या? फिर याद में भी मिक्सचरिटी होती है, परसेंटेज में होती है। और
सूर्यवंशी की 12 श्लोक में तो पूरे आध्यात्म के पूर्वज है 8 और बाकी 4 छोटे धर्म के
वो तो बता दिया ना। और धर्मों के जो बीज हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं लेकिन वो विनाशकारी ग्रुप में चले गए। क्या स्थापना के ग्रुप में नहीं आए, पालना के ग्रुप में भी नहीं आए, इसलिए उनको त्रेता के अंत की 3 गद्दियों की प्राप्ति हो जाती है। विनाश में भी सहयोगी तो बने, बिना विनाश के तो स्थापना भी प्रत्यक्ष नहीं होगी, इसलिए उनको भी उजूरा मिलता है।
पाप में पाप बढ़ाने में बाबा रहम करने के लिए आया, फिर वो पाप बढ़ाने के लिए कौन सा चैतन्य आत्मा उनको बाबा ने चुनाया गया इस सारे विश्व में?
पाप बढ़ाने के लिए चैतन्य आत्माओं को बाबा ने नहीं बढ़ाया, चैतन्य और दूसरी आत्माएं तो पाप बढ़ा ही नहीं सकती क्योंकि वो उतनी शक्तिशाली नहीं है। बच्चे बच्चे ही होते हैं और बाप बाप ही होता है, तो बाप में इतनी ताकत है कि इतनी तीव्र गति से पापों की दुनिया को वाइब्रेशन में इतना तीव्र गति से ले जाए कि ज्यादा लंबे समय तक रखड़ते न रहे, जल्दी से वो दुनिया खलास हो जाए। इसलिए बोला पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए।
बाबा ने पंतत्व को ऐसा कहा गया कोई एक जैसा भी हो एक विकार में ज्यादा गहराई से पहुंचने से पंतत्व ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा विकार एक से ही जुड़ेंगे तो ज्यादा पतित बन जाएगा। फिर व्यभिचार को ऐसा कहा गया अनेकों का साथ साथ जुड़ेंगे तो व्यभिचार बन जाएगा।
व्यभिचारी ज्यादा विकारी माना जाता है या व्यभिचारी ज्यादा विकारी माना जाता है? व्यभिचारी जो है वो कुत्ते का मुसाल कहा जाता है उसका।
फिर बाबा ने तो भक्तों को पावन बनाने के लिए आया था, ऐसा नहीं कहा गया।
तो व्यभिचारी होते हैं वो ज्यादा पतित बनते हैं ना। भारत के राजाएं ज्यादा पतित बने हैं या विदेशों के राजाएं ज्यादा पतित बने? ज्यादा व्यभिचारी बने हैं उन्हीं को वो ही ज्यादा पतित बने, उन पतितों को पावन पहले बनाता है। और
जब तक माया सरेंडर न हो तब तक बच्चे सरेंडर नहीं होते। फिर बाबा ने तो लास्ट में फाइनल परीक्षा ऐसा रखा गया है नष्ट मोह स्मृति लग, फिर वो मोह मोही माया कौन है चैतन्य में वो कब सरेंडर होती?
माया में भी कोई मायावी पार्ट बजाने में भी कोई बीज रूप आत्मा होगी या नहीं होगी? तो बीज रूप आत्मा होगी वो पहले सरेंडर होगी क्योंकि जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो उस समय भी तो शूटिंग की होगी उसने पहले सरेंडर होने की है? जो पहले सरेंडर होता है वो अंत में भी पहले तन से सरेंडर हुआ मन से सरेंडर नहीं हुआ और अंत में मन बुद्धि से सरेंडर होगा।
बाबा रचित भक्त के 4 प्रकार की रचना रची गई है, पहला रचना और पावरफुल रचना और श्रेष्ठ रचना और सूर्यवंशी का माँ का रचना, उसमें से ज्यादा मददगार कौन सा रचना को कहा जाता है?
मददगार तो ज्यादा पावरफुल होंगे वही ज्यादा मददगार बनेंगे।
फिर कहाँ से बाबा वे पावरफुल जगदम्बा तो अभी तो मदद उतना नहीं दे रहे शूटिंग करने
वो विनाश में मददगार नहीं बनती है।
अच्छा, ठीक है।
शंकर का मुख्य काम कौन सा है? शंकर का काम ही है मुख्य, तो उस कार्य में जो सबसे जास्ती मददगार बने तो उनका काम सहज हो गया ना। विनाश होता है इम्प्योरिटी से, पवित्रता से होती है स्थापना और पालना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश, तो दोष भी नहीं लगा और काम भी पूरा हो गया तो शुक्रिया करना चाहिए ना।
एक 108 माला में जगदम्बा आई थी।
माना वो चंद्रवंशी की मुखिया नहीं है, पटरानी है, तो जो पटरानियां बनती हैं वो दूसरे धर्म से कनेक्टेड हैं। जो दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं उनमें से बारह बारह ग्रुप नहीं बनेंगे। माना जो चंद्रवंशी मुखिया है, मुख्य मणका है, वो माला में नहीं आएगा है। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आ जाएंगे और वो नहीं आएगा।
शंकर जी को ऐसा कहा गया है नास्तिकों का हेड
है,
फिर नास्तिक बोले तो ऐसा कहना चाहिए किसी का ऊपर आस्था ना हो।
है
उसका ऊपर क्या है, उसका ऊपर कैसे रहता है, उसका आस्था रहता है या न रहता है?
खुद के ऊपर आस्था, ये कोई आस्था होती है? खुद को शिवोहम, ये कोई आस्था हुई क्या? कोई खुद को भगवान समझ करके बैठ जाए तो हिरण्यकश्यप हुआ, अनास्था वाला हुआ या आस्था वाला हुआ? तो हिरण्यकश्यप हो गया।
ऐसा बन जाएगा क्या बाबा?
है
अंत में ऐसा बन जाएगा क्या?
राम ही रावण होता है ये नहीं बोला है? है
बोला
है। वो का पार्ट तुम बजाओगे? और हाथ उठा। हाँ
शरीर कैसे होता है?
वहाँ ऑटोमेटिक पहले से पता लग जाता है कि अब शरीर छोड़ना है, सागर के किनारे चले जाते हैं। शरीर छोड़ा और सागर की लहर आई, उठा ले गई। चलो